प्रहलाद पिताजी को प्रहलाद जी ने किया, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण जी ने अपने भाई को, एकलौते भाई को, उनको भी प्रत्याग कर दिया, सहोदर दाता को भी। और भरत जी ने क्या किया, अपनी मैया का प्रत्याग कर दिया। कैकई कोई उनसे कहने के लिए, बेटा एक बार तू मां कह दे, कभी नहीं कहा, अंत तक नहीं कहा। जब रामचंद्र जी आए लंका का राज्य विजय करके, रावण को मार करके जब भी आए, उनका राज्याभिषेक हुआ, राजगद्दी पर बैठ गए और 11,000 वर्ष के करीब हो गए, तो एक दिन सब चाहती हुई कैकई मैया रामचंद्र जी के पास में पहुंची, बोली बेटा मेरी एक लालसा रह गई और सब लालसा पूरी हो गई, बस एक लालसा है। मैया कहो क्या तुम्हारी लालसा है, तुम तो मुझे मां कहते हो, लक्ष्मण भी मुझे मैया कहता है, शत्रुघ्न भी मैया कहता है, किंतु भरत मुझे कभी मां नहीं कहा जब से तुम बंद हो गए। मैं ललकती हूं, रोती हूं, तड़पती हूं कि एक बार मुझे मां कह दे, किंतु वो तो मां कहता ही नहीं है, अधिक से अधिक वो रानी के रूप में, रानी कैकई के रूप में वो कहता है, और कुछ नहीं कहता, महारानी कैकई, मैया नहीं कहता। तुम यदि कह दे तो तुम्हारी बात का उल्लंघन कभी भी नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा अच्छा मैं देखता हूं। भरत जी को बुलाया, अजय भैया एक बात था, मानोगे? उन्होंने कहा, विचार किया मन ही मन में, आज 11,000 वर्ष हो गए, बैठिए, 11,000 वर्ष हो गए, रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा ये मेरी बात मानोगे, मालूम होता है कि इसमें कुछ रहस्य की बात है। सोचने ये क्यों कहा भैया ने, विचार करके कहते हैं भाई से रामचंद्र जी से, भैया आपकी सभी बातें मेरे लिए मान्य है, मैं कभी भी आपकी बात का उल्लंघन नहीं करूंगा, किंतु एक बात है, एक बात को छोड़कर। मैंने कहा जी क्या, महारानी कैकई को मां कहने के बदले, मां कहने का शिक्षा आप जो कुछ भी कह दे, बस यही मुझे आज्ञा मत दे। राम के भी आंखों से आंसू टपक आए, मेरे प्रति इतना अथाह अगाध इनकी भक्ति। रामचंद्र जी जीवन में फिर उन्होंने कैकई को फिर और नहीं कहा। कैकई ने यद्यपि अहित तो नहीं किया, सब लोगों का कल्याण करने के लिए ही ऐसा कहा, इसलिए रामचंद्र संमाताओं से भी को अधिक स्नेह करते हैं, तो भी ऐसे ही, इसलिए तजऊ पिता प्रहलाद ही षडबंद भरत महतारी, तजऊ ब्रज की कांताएं जो हैं गोपियां अपने पतियों को प्रत्याग कर दी, किस लिए, इसलिए कि राम के कृष्ण के जीवन मिलने में बाधा देते हैं, इसलिए भय जग मंगलकारी सबका मंगल हुआ। अरे गुरु को भी प्रत्याज्ञा कर दिया तो और की तो बात क्या, शुक्राचार्य को बड़ी महाराज जी ने प्रत्याग, इसलिए माता पिता भाई बंधु हमारे आदरणीय हैं, भगवान का भजन करते हैं उसमें सहायता करते हैं, हमारे आदरणीय हैं, उनके बात का खबरदार कभी उल्लंघन मत करो। किंतु जहां पर विरोध होता है भगवत भक्ति का, खूब दीनता से उन्हें समझाओ और उनका कभी भी निरादर मत करो, यथाजोग्य सम्मान देते हुए चलो, नहीं तो बड़ा भारी अमंगल हो जाएगा। किंतु इस विषय में सुलह ना माने, इस विषय में उनको बड़े नम्र शब्दों में कह दो कि हम तो भगवत भजन, इसमें विरोध मत। इस तरह से तुलसीदास जी ने जब लिखा बड़ी प्रसन्न हुई और वैसे ही किया, घर छोड़कर के चली आई वृंदावन, वृंदावन से द्वारका गई और द्वारका में जाकर के उनके शिव विग्रह में समा गई। तो ऐसे कृष्ण की कथाएं हैं। कल बतलाया गया कि ये कथाएं इसीलिए जदुवंश में कृष्णचंद्र जी स्वयं आए दया से, हमारे लिए इतना त्याग, बस भक्त उनके कुल में आए और ये सब लीलाएं। तीनों प्रकार के लोग भगवान की इन कथाओं का आदर करें। जो संसार से विमुक्त हैं, जो साधक हैं, जो विषयी हैं, जो मुमुक्ष हैं, जिनको मुक्ति की भी इच्छा है, सब प्रकार के लोग भगवान की इन कथाओं का आदर करेंगे। कौन ऐसा व्यक्ति है दुर्भागा आत्मघाती जो भगवान की इन लीला कथाओं का श्रवण नहीं करेगा? ये सब बातें भी कल विस्तृत रूप में बतलाई गई है, विशेष विलंब हो जाएगा। अंत में फिर मैं कुछ कहूंगा, अभी ये कथा आरंभ हो रही है दशम स्कंद की। हम लोग जन्म और जन्म के बाद में नंद बाबा का वो कृष्ण का नंदोत्सव इत्यादि और कृष्ण का जन्म संस्कार इत्यादि तक हम लोग कथा कहेंगे। इसके बाद में कृष्ण का अभिषेक कराएंगे, उनके संबंध में कुछ और बातें होंगी और तब फिर शाम को हम लोग जैसे कथा होती है वैसे अभी आप लोग कथा। हम लोग की कथा चल रही थी, इसमें ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के शंकर को लेकर फिर समुद्र के तट पर गए हैं और वहां पर पुरुष सूक्त से प्रभु की स्तुति करने लगे और वहां पर गिरम समाधौ गगने समीरता आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, हे अमर देवताओं, हमारी वाणी सुनो। हमारे प्रभु ने तुम्हारी इस प्रार्थना को सुन लिया है, ये हमारे प्रभु ने कहा। बात सहज नहीं है। यहाँ ब्रह्मा जी गर्भदशाई तक जा सकते हैं, उनके वो प्रभु हैं। यहाँ पर फिर समुद्र के तट पर गए और फिर समुद्र के भी फिर क्षीरोदशाई विष्णु के भी अंशी हैं। गर्भदशाई ये ब्रह्मा जी के उपास्य हैं, उन्हीं के नाभि कमल से निकले हैं ये। इसलिए ब्रह्मा जी क्षीरोदशाई के माध्यम से स्तौस्तुति की, जो हमारे प्रभु से इसकी सूचना दे दें। गर्भदशाई कह रहे हैं क्षीरोदशाई कि हमारे प्रभु हैं। कौन? गर्भदशाई। आप लोगों की प्रार्थना करने से पहले ही उन्होंने जान लिया है तुम जो जिस बात के लिए आए हो। पृथ्वी की आने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं धैर्य नहीं था इसलिए आई। किंतु सच्ची बात तो ये है, प्रभु उसके पहले ही जानते हैं और उन्हीं का विधान से ये सब कुछ हो रहा है। सभी कुछ वो जानने वाले हैं, सर्वांतरजामी हैं, त्रिकाल दर्शी हैं। इसलिए गर्भदशाई जी ने आदेश दिया है क्षीरोदशाई को, जो तुम जाकर के देवताओं से कह दो जो गर्भदशाई के जो प्रभु हैं। कौन प्रभु? कर्णाब्दशाई के भी जो मूल अंशी, नारायण के जो भी मूल अंशी, स्वयं कृष्ण चंद्र जो हैं सब अवतारों के अवतारी, वो जान ली हैं और उन्होंने आदेश दिया है गर्भदशाई को जो तुम क्षीरोदशाई को कहो और क्षीरोदशाई आप लोगों को सूचित। ये सबके प्रभु हैं, कृष्ण कृष्ण ने जाना है इसलिए उन्होंने आदेश दिया है और उनके आदेश को हम तुम लोगों से सुना रहे हैं। ये सब चीजें टीकाओं में है, सब लोगों के समझने लायक नहीं है। इसलिए कृष्ण मूल है यहाँ और वही आदेश दे रहे हैं गर्भदशाई को और वो क्षीरोदशाई के द्वारा ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को कह रहे हैं। कहा क्या, आदेश दिया तुम लोग लौट जाओ, प्रभु जान रहे हैं, मैं स्वयं सबके इस जो है सर्व कारण कारण सबके आदि अपने अनादि वो मैं खुद ही आ रहा हूं। मैं अंश भागे न, अंश भाग का तात्पर्य यह कि अंश के द्वारा देवकी वसुदेव के यहां पर मैं अवतरित होऊंगा और मैं जो स्वयं हूं अहम, अहम कौन, वो जो कह रहे हैं मूल में कृष्णचंद्र, मैं आऊंगा जसोदा के पुत्र के रूप में नंद बाबा के घर में नंदालय में मैं स्वयं आऊंगा और अंश भागे ना मैं वहां से। दूसरी बात, अंश भागे का एक और भी तात्पर्य होता है, अंश भागे न, मैं अपने जो अंश भाग बल देव प्रभु हैं उनके साथ में मैं आ रहा हूं। मेरा मथुरा में आविर्भाव होगा और जन्म लीला होगी गोकुल में, आविर्भाव में और जन्म लीला में बहुत अंतर है, बहुत बहुत अंतर है। भगवान का आविर्भाव होता है, तिरोभाव होता है ने? और स्वयं भगवान जो कृष्ण हैं, नंदनंदन जो हैं, राधाकांत जो हैं, उनका आविर्भाव नहीं, उनकी जन्म लीला होती है। इसलिए उन्होंने आगे से सूचित किया और ये सब चीजें देवी को बतलाया, अपनी अनुजा को, विष्णुर अनुजा। विष्णुर अनुजा कौन है यदि रख लिया जाए कि कृष्ण का जन्म मथुरा में वसुदेव देवकी के द्वारा हुआ, तो वहां पर कौन लड़की पैदा हुई? कोई भी लड़की पैदा नहीं। इसलिए वहां पर यदि वहां पर उन कोई लड़की का जन्म नहीं है, इसलिए उनकी कोई अनुजा नहीं है। अनुजा माने अनुमाने पीछे, जब मैंने जन्म लिया अर्थात तो कृष्ण के पीछे जो जन्म लिया, अब चलिए गोकुल में, मथुरा में तो हुआ नहीं, मथुरा में आविर्भाव हुआ वो पीछे बतलाएंगे, अभी तो नहीं बतला रहे, पीछे बतलाएंगे। वहां पर आविर्भाव हुआ माने जो अवतारी बलदेव हैं वो वहां पर आविर्भूत हुए अपने अंश से, कहां, देवकी के गर्भ में, और उनको जोगमाया को कृष्ण आदेश दे रहे हैं जे तुम जाना मथुरा में और देवकी के गर्भ में बलदेव जी का अंश वहां पर है, उसको ले आना और रोहिणी के गर्भ में अब उसके जो पूर्ण भाग हैं उस बलदेव में मिला। लोग समझ नहीं सकेंगे, ये सब उसी शब्दों में ही इसका अर्थ छिपा है, किंतु इस तत्व को जो जानने वाले हैं वो समझेंगे, सब नहीं समझ सकेंगे। इसलिए देवी को इस प्रकार से आदेश दिया, अंश भागेन का अर्थ ये समझिए। कुछ लोग कहते हैं कि बलदेव का जन्म कृष्ण से एक वर्ष कितना माह पहले हुआ, किंतु श्रीमद्भागवत के लीला चरित्र के वर्णन से ऐसा मालूम होता है कि बलदेव जी कृष्ण से केवल कितने दिन पहले हुए। पूर्णिमा को बलदेव होते हैं और अष्टमी को कृष्णचंद्र होते हैं। तो यदि कृष्ण को पहले अष्टमी को ले लीजिए और उसके बाद में पूर्णिमा को बलदेव होते हैं तो कितने दिन का अंतर हो रहता है? केवल 8 दिन का अंतर होता है। 8 दिन तो होने से तो बलदेव प्रभु छोटे हो जाते हैं, इसलिए उनको उस वर्ष के पहले वाले में रखिए। तो फिर हो जाएगा 1 वर्ष कितना दिन। किंतु यदि ऐसा मान लिया जाए तो दोनों का साथ साथ में घुटनों पर चलना, एक ही साथ में दोनों का नामकरण, यह सबसे बड़ी चीज है। यह संभव पर नहीं हो सकता था। दोनों का नामकरण एक साथ कैसे होगा? क्या 1 वर्ष और कितना महीना बलदेव प्रभु जी के लिए चुपचाप रहेंगे, कहां रहेंगे? इसलिए ऐसी संभावना नहीं। इसलिए शास्त्रों के विचारों से जीव गोस्वामी ने इस चीज को आविष्कार करके बतलाया कि नहीं, ऐसा नहीं, केवल थोड़े दिन कहीं पहले कृष्ण पूर्णिमा को हुए बलदेव प्रभु जी और उसके बाद अष्टमी में ये होते हैं, इसलिए थोड़े दिन का केवल अंतर होता है। ऐसी सब बातें इसके अंदर में छिपी हुई हैं। कृष्णचंद्र जी का जन्म मथुरा में नहीं हुआ, वो गोकुल में हुआ। कैसे, किस प्रकार से हुआ, आगे हम लोग बतलाएंगे। अभी कथा जहाँ से आरंभ हो रही थी वहीं से फिर आरंभ हो रही है, आप लोग श्रवण करें। स्त्रियां सब गोपियां सब जुटी हुई, पहले ये थोड़ा सा कीर्तन कर देंगे, नंद कहो आनंद भयो
देख नहीं है लाल,
और इसके बाद में और उनको कब बुलाएगी यहाँ है? है? उनका अभिषेक कृष्ण की बाल्य लीलाओं का श्रवण किया। श्रीमद् भागवत में के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कृष्ण चंद्र जी मथुरा में देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। कुछ लोग कहते हैं कि उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से, इस विषय में हम लोग थोड़ा सा विचार करें। बड़ी भारी सभा जुटी और उस सभा में मथुरा के लोग, मथुरा के बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण लोग और सब जनता एक तरफ में बैठी। उसके पास ही में द्वारका आकर बैठ गई, पार्टी में इंद्रप्रस्थ और वहां के भीष्म पितामह अर्जुन पांडव लोग भी वहां पर बैठ गए। बड़ी सुंदर खासी सभा वहां पर जुटी। दूसरी तरफ में ब्रज के लोग थे, ब्रह्मा को भी, व्यास जी को भी, सुखदेव गोस्वामी को भी उसमें आवाहन किया गया। वो लोग ठीक दोनों के बीच में बैठे। अब प्रश्न हुआ कि लोग मीमांसा करें कि कृष्ण का कहाँ जन्म हुआ। मथुरा की तरफ से अक्रूर और उद्धव जी खड़े होकर के उन्होंने कहा कृष्ण का जन्म जरूर मथुरा में ही हुआ। उनको वसुदेव जी ले गए, गोकुल में रखा है और वहां पर कन्या थी उसको ले आए। ये तो सर्वविदित है, सुखदेव गोस्वामी ने भी ऐसा ही कहा है, अक्रूर ने भी इसका अनुमोदन किया और उन्होंने कहा, वो वयवृद्ध हैं, उन्होंने कहा कि हाँ निश्चित नंद के ही, वसुदेव जी के ही पुत्र कृष्ण हैं, मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं। इसी प्रकार से भीष्म पितामह ने, कुंती ने, पांडवों ने भी इस पक्ष का समर्थन किया मथुरा वाले लोगों का, जो कृष्ण वसुदेव जी के और देवी जी के लड़के हैं। ब्रज के लता पत्ता तक भी ब्रजवासियों की तो बात क्या, गोपियों की तो बात ही क्या, वहां का कोई भी धूली कण इस विषय को स्वीकार नहीं कर सका जो कृष्ण मथुरा में जन्म। हम लोगों ने वहां पर देखा, हम लोगों के सामने नाड़ी छेद हुआ, जात संस्कार से कृष्ण वहीं पर खेले धूले। और आप लोग कह रहे हैं जो मथुरा में इनका जन्म हुआ, वाद विवाद बढ़ गया, ब्रह्मा जी वहां पर थे, ब्रह्मा जी से पूछा गया, सुखदेव गोस्वामी जी भी वहां पर थे उनसे पूछा गया, नारद जी भी वहां आ गए, व्यास भी आ गए, सुखदेव गोस्वामी से मथुरा वालों ने पूछा, आप ठीक ठीक उत्तर दीजिए, बहाना काल मत बनाइए। कभी आप कहते हैं जो मथुरा में जन्म लिया और वो ले गए वहां और दे आए और लड़की को बदल ले आए, और कभी आप कहते हैं नहीं ये नंद के पुत्र हैं, यशोदा जी के पुत्र हैं, आप ठीक ठीक कहते बतलाते क्यों नहीं है। उन्होंने कहा हमने तो भाई ठीक ठीक कहा, मैं अब स्पष्ट बतलाता हूं, मैंने परीक्षित महाराज को खुश करने के लिए केवल ऐसा कहा था कि मथुरा में उन्होंने जन्म लिया, मथुरा में आविर्भूत हुए किंतु अंश से, पूर्ण रूप से वहां नहीं हुए। मैंने तो ये श्रीमद्भागवत में एक जगह नहीं, पचासों जगह मैंने ये ऐसा कहा है। तो कहां कहा आपने? मैंने ये नहीं कहा जो क्या नंदस्तु आत्मजो उत्पन्न जातह्लादा महामना, मैंने लिखा नहीं। आत्मज किसको कहते हैं? आत्मज मैंने आत्मो वही जायते पुत्र, जो आत्मा से उत्पन्न होता है, पिता के द्वारा, माता पिता के और से माता के गर्भ में जो पैदा होता है वो आत्मज कहलाता है। इसलिए मैंने स्पष्ट कहा कि ये नंद बाबा के पुत्र हैं। अरे मैंने तो और डंके की चोट में बतलाया, कात्यायनी की पूजा में गोपियों ने उनको कैसे क्या कहा, वो तो मेरा कहना ही था, नंद गोप सुतम देवी कुरुते पति में कुरुते नव। मैंने तो एक गणेश अब इसे बतलाओ तो नंद गोप सुतम देव, नंद गोप का पुत्र मैंने बतलाया, और भी मैंने बतलाया देवी और वसुदेव के संबंध में, अंत में दसम स्कंद के अंत में उन्होंने बतलाया क्या ये मनु ये विवाद मात्र है। जयति जननी देवकी जन्म बादौ, देवकी जन्म बादौ, देवकी के पुत्र हैं ये विवाद केवल मात्र है, यथार्थतः तत्वतः नहीं, वो तो यशोदा के ही पुत्र, हमने यहां पर भी बतलाया। और मैं इतने में ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा से पूछा गया कि आपका क्या विचार है, आप जरा स्पष्ट करके निरपेक्ष होकर के बतलाइए। तो मैंने भी तो बतला दिया, तो आपने क्या बतलाया? उन्होंने कहा पशु पंगजाय नौमिध्यते अप्रबकुशे सरिदंबराय गुंजावतंस पर पच्छल सन्मुखाय लसन मुखाय वन्न सजे कवल बेत्र विशानुदेन लक्ष्मस्य मृदुपदे पशुपांगजाय। पशु को पशु का जो पालन करने वाले नंद बाबा, उनसे उत्पन्न हुए ये अंग से उत्पन्न, स्पष्ट रूप में अंग से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये तो नंद बाबा के ही पुत्र हैं। बस जय जयकार होगा, बोलो नंद बाबा के पुत्र नंद नंदन की जय। इस तरह से वहां पर ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया। व्यास जी ने भी बतलाया दोनों एक ही तत्व हैं, तत्वतः नंदनंदन और यशोदा वसुदेव नंदन और नंदनंदन में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। भावना और भाव कुछ अंतर है, रस की दृष्टि से दोनों में कुछ वैशिष्ट्य मात्र है। वही आंशिक रूप में वसुदेव के पुत्र हैं और वही परिपूर्ण रूप में वहां पर हैं, दोनों एक ही साथ में कृष्ण यहां भी और वहां दोनों जगह एक ही साथ में उत्पन्न हुए। यशोदा के गर्भ से एक कन्या, एक पुत्र और एक कन्या कृष्ण वहां पर प्रकट हुए, जन्म दिया, और देवकी के गर्भ से वो प्रकट हुए। कहते हैं कि जिस समय में उन्होंने कहा कि तुम छोटे से शिशु बन जाओ वसुदेव जी ने, साथ ही साथ वो कृष्ण जो थे वहां नंद बाबा के घर में जो थे, यशोदा के घर से जो पैदा हुए थे, झट आकर के इनको अपने में मिला लिया और द्विभुज के रूप में वहां श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हो गए, उसी को वहां रखाए और अदल बदल करके ले आए। इसी तरह से जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए तो वहां पर ब्रह्म सरोवर पर यमुना के पास में, भातरव के पास में, ब्रह्मांड अक्रूर घाट पर वो वहीं पर रह गए। कृष्ण बलदेव रोहिणी के पुत्र और नंदनंदन रह गए और यहां से मथुरा वाले कृष्ण जो वसुदेव के घर में चले गए। साधारण आदमी इस तत्व को नहीं समझते हैं, समझेगी भी नहीं, ये तत्व जो वैष्णव लोग ये सब कुछ समझते हैं। दूसरी बात एक और, भजन राज्य ने केवल भगवत कृपा से काम नहीं चलता अथवा अपने साधन से काम नहीं चलता, अपने भजन की का परिश्रम भी होना चाहिए, साथ साथ में भगवान की कृपा होनी चाहिए। रामानुज दक्षिण प्रदेश के एक आचार्य हैं, उन्होंने उनके दो प्रकार के शिष्य हैं, एक बड़ंगलई और एक चलंगलई कहलाते हैं, एक मरकट न्याय और दूसरा मार्जार न्याय कहलाता है। मरकट माने होता है बंदर, बंदर अपने बच्चों को छूता नहीं आदि, यदि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग करना हुआ, छलांग देना हुआ, तो वो चुपचाप जरा बैठ जाता है या खड़ा हो जाता है और उसका बच्चा उछल कर और उसकी गोदी में या पीठ पर अपने पैरों से हाथों से खूब पकड़ लेता है और तब वो छलांग लगाता है, लगाती है बंदरी। यदि उधर में चली गई बच्चे के साथ में ठीक है, और यदि बीच में ही बंदर का बच्चा यदि गिर गया फिर जन्म भर नहीं छुएगी उसको, वो चाहे बिलबिलाए मर जाए तो भी नहीं छुए। इसको कहते हैं मरकट न्याय। मरकट न्याय माने मैं अपने परिश्रम से साधन से भगवान को पालूंगा। दूसरा है मार्जार न्याय, बिल्ली के स्थान, बिल्ली का बच्चा अपने आप नहीं, जब छोटा सा रहता तो मेव करता रहता है या करती रहती है उसकी बच्ची, और उसको जहां कहीं जाना होगा माँ अपने मुख से पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, वो कुछ भी तनिक भी प्रयत्न नहीं करेगा चलने के लिए फिरने के लिए, पकड़ करके यहां से वहां वो मेव करती रहेगी, ले जा करके रख देगी, फिर कहीं ले जाना होगा उसको पकड़ करके ले आएगी, अपना तनिक भी प्रयास नहीं करती। तो कुछ लोग ये कहते हैं हमारे प्रयास से क्या होगा, जब भगवान की कृपा होगी हमको प्राप्त करा लेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, जब इतना सब कुछ प्रभु ही कर रहे हैं, बिना प्रभु की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं डोलना है, नहीं डोलता, तो हमको प्रयत्न करने की क्या जरूरत है, जब उनकी कृपा होगी वो मिल जाएंगे, और नहीं तो उनकी इच्छा नहीं है तो हम हजार प्रयत्न करेंगे वो कभी मिल नहीं सकते, इसलिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। ई ड्रिंक एंड बी मेरी खाओ पीओ मौज करो, जब उनकी इच्छा होगी ले लेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी से यह प्रश्न पूछा गया, क्या करना चाहिए, हम लोग को साधन भजन करना है या भगवान की कृपा के लिए हम लोग प्रतीक्षा करते रहेंगे, जब जब जन्म जन्मांतरों में प्रभु की इच्छा होगी वो हमको मिल जाएंगे, क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो यशोदा मैया कृष्ण को बांधना चाह रहे, नन्हा मुन्हा सा छोटा सा नन्हा बच्चा कृष्ण है। यशोदा मैया सखियों को बोली, रस्सी अपने घरों से लाओ, पहले अपने केस बांधने के जो रेशम की डोरी होती है उसको खोल करके कृष्ण को बांधना चाह। कृष्ण कह रहे मैया मैया रे मुझे मत बांध। मैया रे रोने लगे, आंख से आंसू धारा बहने लगे। कृष्ण ने कृष्ण का इस प्रकार से रोता हुआ देखकर कृष्ण को यशोदा मैया को भी कुछ दया आई। मैं अच्छा लड़कियां मैं फेंक देती हूं किंतु तुम्हें ऐसे नहीं करूंगी, तुमको छोड़ूंगी नहीं। क्यों नहीं छोड़ा, इसलिए कि कुछ देर पहले ही अभी बतलाया था कृष्ण ने उलाहना दिया मैया को, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं हो गया सांवला नंद बाबा गोरे यशोदा गुरु। बच्चों ने उसको चिढ़ाया था। कृष्ण रोते रोते मैया के पास में आए, गोदी में नहीं आ रहे। बहुत प्रयत्न करने के बाद में समूह ने बतलाया कि मैं तेरा बेटा नहीं, तो मैं तेरी गोद में अब क्या आऊंगा, और मैं कहीं चला जाऊंगा वन जंगल में या यमुना में जहां आत्म समाधि ले लूंगा, अब मैं घर में नहीं आऊंगा। तो यशोदा मैया डर रही है कि बड़ा उद्यमी लड़का है और कहीं यदि कुछ कर दिया तो ये भाग जाएगा भी, अभी चित्त चंचल है, इसको बांध करके घर में रखो, इसके बाद में मैं अपने काम से निवृत्त हो लूंगी, इसको संग दूंगी, और इसके बाद में फिर जब ये शांत हो जाएगा तो मैं फिर इसको लेकर के अपने पास में बंधन खोल करके गोदी में शांत करूँ। इसलिए सोचा कि इसे बांध करके रखूं, इसलिए बांधना चाहा, किंतु वो रस्सी दो अंगुल पड़ रही है। फिर मंगाया एक रस्सी, फिर जोड़ने लगी, उनके घर की सारी रस्सियां समाप्त हो गई, किंतु प्रत्येक बार दो ही अंगुल, तीन अंगुल, चार अंगुल या एक अंगुल, आधा अंगुल नहीं, प्रत्येक बार दो अंगुल पड़ गई। बड़े आश्चर्य की बात। गोपियां हंसने लगी, बोलिए सखी क्यों इसको बांधने लगी, ये तेरे बंधन में नहीं आएगा, ब्रह्मा ने इसके ललाट में बंधन नहीं रखा, ब्रह्मा जी नहीं, तो तू इसे क्या बांधेगी, तुम सवेरे से शाम तक भी नहीं बांध सकेगी, अब तो 10-11 बज गए हैं, अब इस बच्चे को छोड़ दो। उन्होंने कहा हमारे कोख से निकला है, मैं इसे नहीं बांध सकती, आज से सब शाम तक क्या जीवन भर बांधते रह जाऊंगी, यदि मैं जो खाना पीना नहीं करूंगी, खाऊंगी ना पीऊंगी ना कुछ करूंगी, मैं इसे बांध करके ही छोड़ूंगी। जीत पकड़ लिया, अच्छा तो ठीक है, बस अपने अपने घरों से भी रस्सियां लाए, अच्छा देखें तो जरा बांध तो लो। यशोदा जी बांधने दो अंगुल पर, यह दो अंगुल क्या है, यशोदा जी समझ लीजिए मैं बांध लूंगी, नहीं बांध सकती, क्यों, कृष्ण तो स्वयं भगवान है, उनकी ऐश्वर्यमयी योग माया शक्ति है, अघटन घटन पटियसी। कृष्ण ने सोचा आज मैया हमें बांध देगी, बच्चे खेलने के लिए तैयार हैं, मैं उनके साथ में खेल नहीं सकूंगा, आज हमारा प्लान कुछ था कि कौन गोपी के घर में कुछ चोरी करूंगा, आज वो नहीं हो सकेगा, गैया डकर रही है हमारे लिए, गैया बिना हमारे दर्शन के दूध नहीं देती, तो वो तो दूध नहीं देंगी, हमारी और लीलाएं नहीं होंगी, इसलिए मैया हमें न बांधती तो अच्छा था। सप्त संकल्प है, अभदन पटियसी शक्ति योग माया ने किसी को समझने नहीं दिया, प्रत्यक्ष रूप में नहीं आई, रस्सी बंध रही है, जुड़ रही है, जोड़ते मीलों लंबी हो रही है, किंतु ऐसे आश्चर्य की बात थी कि वो बस दो अंगुल कम ही रहे। कृष्ण की कमर छोटी थी, करधनी सोने का बंधा हुआ है, उसमें नुपुर जैसे झुनझुन करने वाले इसमें सब लगे हुए हैं। वो करधनी बढ़ नहीं रही, नहीं तो टूट जाती, कमर बढ़ जाती तो वो तो जैसी की तैसी है, किंतु रस्सी इतनी बढ़ करके भी और बांध नहीं पा रही। ये है क्या, कृष्ण नहीं चाह रहे ये बंध, और जो सुधा जी बांधने की चेष्टा कर रही हैं, इसलिए वो बंध नहीं है। जिस समय में कृष्ण इच्छा करेंगे, कृपया सी तो संबंधन उसमें लिखा, कृष्ण कृपा करके बंध गए। कैसे बंध गए, देखा जिस यशोदा जी के मुख पर फेद के बिंदु चमकने लगे, मोतियां झड़ रही हैं पसीने में, और कभी उनका मुख विवर्ण हो गया। यशोदा जी कहती हैं, मेरे गृह के ठाकुर नारायण जी सालग्राम, आप प्रसन्न हुई है, मैं अपने बच्चे को बांध नहीं सकती, मैं ब्रज में क्या मुख दिखाऊंगी, आप कृपा करें इसको मैं आज बांध। उनके शरणागत हुई, वो सालग्राम है कौन, वही तो है ना, मुख से पसीने के बूंदे आ रहे हैं, परिश्रम से एकदम क्लांत हो गई, मुख विवर्ण हो गया, लाल हो गया, आंसू भी छलकने लगे आंखों में, एक बच्चे को मैं नहीं बांध पा रही। बस प्रभु जी के शरणागत, प्रभु मैं आपके शरणागत हूं, मुझको लज्जा का मुख न दिखाना पड़े, इसलिए मैं इसको बांध सकूं। बस कृष्ण ने देखा जो मैया को बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए कृपया स्वस्त बंधन है, कृपा करके स्वयं बंधन में आ गए। वो जो सिर बांधने वाली केस को बांधने वाली जो रेशम की ड्योरी थी, बस वही दो हाथ थी, बस उसी से उन्होंने उसको बांध दिया। यहाँ पर यही भाव है, जब भक्तों का कष्ट होता है भगवान के भजन करने में, जैसे प्रहलाद महाराज, उसके पिता ने उसको कितना कष्ट दिया, भगवान एकदम द्रवित हो गए, बोले जे बेटा मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, तुम इसके लिए कुछ वर मांगो, जब तक ऐसा नहीं होगा भाई भगवान को नहीं देखा जा सकता, उनका दर्शन नहीं होगा। इसलिए एक जगह बतलाए हैं, कोई एक महिला थी, वृद्ध थी, कोई देवल ऋषि थे, वो कहीं जा रहे थे, उन्होंने देखा सरोवर के तट पर हाथ में ऐसी मुद्रा है, योगी जैसी हैं, उनको देख करके वहां पर ठहर गए। भाजी कौन है ये भी यमुना के किनारे, उन्होंने उसके लिए प्रतीक्षा की कुछ देर के बाद में, उन्होंने आंख खोल दिया, देवी आप कौन हैं, तो मैं ब्रह्म विद्या हूं। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म माने स्तुतियों के मंत्र, तो आप यहां पर क्या कर रही हैं, तो मैं आराधना कर रही हूं। किसके लिए आराधना कर रही हैं, गोपियों के भाव के लिए, गोपियों के भाव को प्राप्त करके मैं कृष्ण की कुछ सेवा कर रही हूं। इतने दिनों से तपस्या ये कर रही आराधना, तो हमारे ब्रह्मा जी चार बार बदल गए हैं, अब ये पांचवे आ रहे हैं, इतना दिन हमारी आराधना हुई, गोपी भाव इतना सहज नहीं, कृष्ण का दर्शन इतना खूब सहज नहीं। अभी आप लोगों ने सुना द्रोण और वसु, द्रोण और धरा, और कश्यप और अदिति ने कितने हजार, 60,000 ना 65,000 वर्ष तपस्या किए, तो उनको थोड़ा सा दर्शन दिया। हम लोग चाहते हैं चट रोटी, मैंने जैसे ही रोटी बनाया और पट उसको खा लिया, इतना सजने रसगुल्ला आया कलकत्ते के नागसेन का, बहुत ही सुंदर, उसको लिया मुख में डाल दिया। भगवान का भजन करना इतना सहज नहीं है, एक साधारण मीरा को भी देख लीजिए कितना कष्ट हुआ, और हम थोड़े में ही बिल बिला जाते हैं। इसलिए भगवान का सहज इतना नहीं है। जब वो देखेंगे ये कठोर परिश्रम हमारे लिए कर रहा, संसार की समस्त विपत्तियों को झेल रहा है हमारे लिए, तब अपने को प्रकट करेंगे। इसलिए दोनों मिलकर के होना चाहिए। महाप्रभु जी ने कहा एक व्यक्ति कुआं में डूब गया, गिर गया, लोगों को पता चला कि भाई वो गिर गया, लोग आए भाई इसको निकालना चाहिए, उन्होंने कहा रस्सी फेंक दी उसमें, भाई तुम इसको रस्सी को पकड़ लो, किंतु वो पकड़ता नहीं है, ऊपर से तो फेंक रहा है रस्सी किंतु वो पकड़ता नहीं है, तो वो कैसे निकलेगा, पकड़ना तो पड़ेगा ना। उसी प्रकार से भगवान की कृपा सब समय है, उसको पकड़ना चाहिए ना, उसमें कुछ परिश्रम साधन भजन करना चाहिए। इसलिए साधन भजन भी करो और भगवान की प्रार्थना करो, जिससे तू अपनी कृपा रूपी रज्जु भी हमारे लिए दे दे, सब भगवान को पाया जाएगा। ये दामोदर लीला में यही एक विशेषता है, और भी बहुत सी विशेषता है, समय अनुसार में हम लोग उसका वर्णन करेंगे। कल यदि समय होगा तो थोड़ा सा जमला के उनके संबंध में मैं बतलाऊंगा, आज यही कर का जन्म हो गया ना, कृष्ण का जन्म हो गया अष्टमी तिथि को। अच्छे राधा जी उनको छोड़कर के रह सकती हैं? नारद जी विचार कर रहे हैं, मैं नहीं विचार कर रहा, नारद जी विचार कर रहे हैं। रसमय ब्रह्म स्वयं कृष्णचंद्र जी प्रकट हुए हैं, उनको छोड़कर के तो एक सेकंड रह नहीं सकती वो, और न यही रह सकते हैं। तो यदि ये प्रकटित हुए हैं तो वो जरूर कहीं ना कहीं उन्होंने भी जन्म लिया होगा। अब वो सूचे जी कहाँ है जरा खोज लगाऊं, करते 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 खोजते खोजते रावल में पहुंचे। रावल कहाँ? नंद बाबा कृष्ण का जन्म नंदगांव में और इनका जन्म राधा जी का जन्म बरसाने में नहीं हुआ था। जैसे कृष्ण अपने सब लोगों को लेकर के नंद बाबा आ गए थे नंदगांव में, उनके परम मित्र भी बरसाने को छोड़ करके वो रावल में आए गए थे। रावल उनकी ससुराल है, कृतिका जी की माता पिताजी का वो घर है, तो वहां पर आ गए थे। अब ये खोजते खोजते गोकुल से कृष्ण का दर्शन किया और श्रीमती जी का भी किशोरी जी का भी दर्शन करने के लिए वहां से खोजने लगे। खोजते खोजते रावल में आए, बरसाने में वृषभानंद महाराज के पास में पहुंचे। इधर उधर पता लगा उनके घर में कोई संतान हुई है, वो उनके यहां गए, पूछा जी आपको कोई संतान हुई? उन्होंने बतला जहां हमको एक बालक हुआ है, तो मैं बालक का दर्शन करना चाहता हूं। तो उन्होंने श्रीदाम जी को लाया, श्रीदाम जी उनके पुत्र हैं। कितने दिन का ये बालक हुआ? तो ये करीब करीब डेढ़ दो वर्ष का हो गया है। अरे डेढ़ वर्ष का, दो वर्ष का हो गया? अभी हाल में कभी दो चार दिन पहले कोई लड़की या लड़का कोई पैदा हुआ? तो हाँ एक कन्या हमको पैदा हुई। तो वो कहाँ है जरा देखूं तो वो अच्छा तो ठीक है, अच्छा आपको मैं देता हूँ। घर में गए और व्यवस्था करके फिर उनको ले गए घर में। तो वहां पर जाकर के देखा छोटी सी बड़ी सुंदरी एक लड़की वहां पर पल्ले में झूल रही है, किलकारी मार रही है, पैर के अंगूठे को अपने मुख में दे रखी है, कभी देती है फिर छोड़ती है, कभी पैरों को ऐसे कर रही है, बड़ी अद्भुत सुंदर। नारद जी ने कहा उनके पिताजी से, मैं तो जानते हैं जो मैं ज्योतिष जानता हूं, तो मैं ये कैसी लड़की हुई आपको बतलाऊंगा, इसका हाथ भी देखूंगा। आप चावल ले आइए, हल्दी ले आइए, दूध की घास ले आइए और ये जमुना जल ले आइए, मैं जरा आचमन करके तब ये सब बतलाऊंगा। मैंने बहाना करके वहां से सरका दिया, वो जब लाने के लिए गए तो 10-20 मिनट की देरी हुई और इतने में इन्होंने सौ स्तुति आरंभ कर दी। सौ स्तुति सुन करके ललिता जी पहले प्रकट हो गई, उनकी सब सखियां प्रकट हुई, किशोरी जी भी प्रकट हो गई। किशोरी जी तो पहले छोटी बालिका के रूप में थी, अब इनकी प्रार्थना सुन करके और झट किशोरी रूप में प्रकट हो गई। ललिता जी ने कहा, अरे तू चुपचाप क्यों हो गया, आंखें बंद क्यों कर दिया, जल्दी से आंख खोल करके देखो और प्रार्थना करो, नहीं तो अभी ये क्षण मात्र में चली जाएंगी। इतना कहते कहते ही वो बस अंत ध्यान हो गई, हाथ मलते रह गए पछताते हुए। ठीक पीछे से उन्होंने नारद कुंड में गोवर्धन के पास में उन्होंने लाखों वर्ष तपस्या की, सुनते हैं कि आज भी कर रहे हैं किशोरी जी का दर्शन करने के लिए। जब ब्रह्मरुद्र सुख नारद भी रालक्षितोंसि कर्ण क्यूलमनंत शक्ति संग्राधिका चरण रेणु अनुस्परा। ब्रह्मा भीष्म शंख और जितने लोग हैं कोटि कोटि वर्ष तक तपस्या करके कृष्ण की ही कृपा नहीं प्राप्त करते हैं। कृष्ण कैसे प्राप्त होते हैं, यदि कोई राधिका जी का मैं उनकी दासी हूँ ऐसी भावना किसी के अंदर में हो जाए और कृष्ण को पता लग जाए कि ये कृष्ण की दासी होना चाहती है, बस अपने को एक समतक क्षणार्थ में उसको अपने स्वरूप को उनके यहाँ प्रकट कर देते हैं, अपने को दे देते हैं। राधिका की चरण धूलि स्पर्श करने मात्र से ही कृष्ण की संपूर्ण करुणा वहां पर उपस्थित हो जाती है। इसलिए मैं नारद जी कहते हैं, मैं उस धूलि को मैं प्रणाम कर रहा हूं। कोई कोई तो हम देखते हैं कि राधा जी को कैसे प्रणाम करते हैं, उस दिशा को प्रणाम करते हैं जिस दिशा में श्रीमती राधिका जी हैं। जस्या कदा विवसनांचल खेलोनोक्त धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि जोगेन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोऽपि सत्या नमस्तु वृषभानुभूति।